आरवी के साथ इतना बुरा सुलूक करने से पहले आपके जहन में एक बार भी ये ख्याल कैसे नहीं आया कि वो अमर की बेटी के साथ आपकी पत्नी और इस घर की बहू भी है? कैसे आपने एक औरत को सबके सामने शर्मसार कर दिया? क्या यही संस्कार दिए थे हमने आपको? अर्पिता जी के सवालों का कोई जवाब नहीं था शान के पास। उसकी खामोशी अर्पिता जी को और ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए और गले से रुंधी हुई आवाज निकली, जाने कैसा सहा होगा हमारी बच्ची ने वो सब, क्या असर पड़ा होगा उनके नाजुक दिल पर। वजह चाहे जो रही हो, पर आपने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। दुश्मनी आपके और अमर के बीच थी, आरवी को बीच में नहीं लाना चाहिए था आपको। उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आपने एक औरत की अस्मिता पर वार करके अच्छा नहीं किया। आपको इस गुनाह की कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। औरत के इज्जत पर हाथ डालने वाले हर पापी को सज़ा मिली है। आपने तो अपनी ही पत्नी को भरी महफिल में बेआबरू किया है। महादेव आपको इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। कहते हैं माँ के दिल से निकली दुआ भी लगती है और उसके दर्द भरे दिल से बद्दुआ भी ज़ाया नहीं जाती। अर्पिता जी के तड़पते दिल से निकली ये बद्दुआ क्या रंग दिखाती है, ये तो वक्त ही बताने वाला था। अर्पिता जी ने हीन निगाहों से शान को देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। उन्हें आरवी की चिंता हो रही थी। शान उनके जाने के बाद भी सर झुकाए बैठा रहा। सुभाष जी ने भीगे हरफों के साथ कहना शुरू किया, हमने आपको इतनी बार समझाया है कि छोड़ दीजिए इस दुश्मनी को। हमें नहीं लगता कि अमर ने वो सब किया होगा, और आपकी माँ, वो कभी हमें धोखा दे ही नहीं सकती। फिर भी आप सालों से अपने मन में अमर के लिए नफ़रत पालते आ रहे हैं, और आज उस नफ़रत की आग में आपने अपनी हस्ती खेलती गृहस्थी को जला लिया। अगर आरवी अमर जी की बेटी है, तब भी आपको उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी आपने वो सब किया, और आरवी ने नहीं रोका आपको, क्योंकि आप पति हैं उनके। पर आप पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सके। आपकी जिम्मेदारी थी उनकी इज्जत की रक्षा करना, उन्हें बुरी नज़रों से बचाना, और आपने खुद उन्हें भरी महफिल में जलील कर दिया। अपने व्यवहार से मौका दे दिया दुनिया को उनके चरित्र पर उंगली उठाने का। उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना कर्तव्य था आपका, और आपने ही उनके स्वाभिमान को तोड़कर बिखेर दिया। बहुत अफसोस हो रहा है हमें ये कहते हुए कि उन्होंने तो आज तक पत्नी होने का हर कर्तव्य बखूबी निभाया, पर आप एक अच्छे पति तो क्या एक आदर्श इंसान तक नहीं बन सके। आपकी हरकतों ने आज हमें शर्मसार कर दिया है। आपको अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। आपने हमारी परवरिश को सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब हमें एहसास हो रहा है कि हम आपको वो संस्कार नहीं दे सके जो शायद आपकी माँ अगर हमारे साथ होती तो वो आपको देती। हमें अब समझ नहीं आ रहा कि आपकी इस हरकत के बाद हम उस बच्ची से नज़रें कैसे मिला सकेंगे, कैसे माफ़ी मांगेंगे आपके गुनाहों की। जाने वो आपको कभी माफ़ कर भी सकेंगी या नहीं, पर हम अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करेंगे। आप हमारे बेटे हैं, और अगर आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है तो कहीं ना कहीं हम भी उनके गुनहगार हैं, इसलिए हम उनसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और क्योंकि आपने गलत हमारे साथ नहीं किया, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बाप होने के नाते इतना ज़रूर कहेंगे कि जो आपने किया वो पाप है। तो उस बच्ची से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, शायद वो आपको माफ़ कर दे। और अगर माफ़ी ना भी मिली तो सज़ा ही भुगत लीजिएगा अपने गुनाहों की, शायद उससे आपका पाप कुछ कम हो जाए। और एक बात कहेंगे हम आपसे, इस दुश्मनी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब भी वक्त है, भूल जाइए सब और अपने घर परिवार और रिश्तों पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस दुश्मनी की आग में अपना सब कुछ जलाकर राख कर दें। कहीं ये बदले की भावना आपसे आपके रिश्तों को ना छीन ले। नफ़रत की इस जंग को लड़ते लड़ते कहीं आप इतने दूर ना निकल जाएं कि जब पलट कर देखें तो खुद को तन्हा पाएं। इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए, संभाल लीजिए सब। आज शायद आरवी नाराज़ हो आपसे, पर अगर आपने माफ़ी मांगने में देर की तो ऐसा ना हो कि ये नाराज़गी इतनी बढ़ जाए कि आप माफ़ी के लिए तरस जाएं। एक आखिरी बात, आरवी जैसी पत्नी नसीब वालों को मिलती है सिर्फ इस एक सच के लिए कि उनके अंदर उस इंसान का खून है जिनसे आप बेइंतहा नफ़रत करते हैं। उन्हें इतना मत दूर कीजिए उन्हें खुद से, इतना दुख मत दीजिए उन्हें कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएं। याद रखिएगा, हर इंसान की सहने की एक सीमा होती है, और जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तब अक्सर लोग उन इंसान और चीज़ से दूर हो जाते हैं जो उन्हें असहनीय पीड़ा दें, और एक बार अगर वो दूरी आ गई तो उसे मिटा पाना बेहद मुश्किल होता है। आपके पिता होने के नाते हम भी आपको बस यही कहेंगे कि वक्त रहते अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर उन्हें सुधार लीजिएगा। क्योंकि अगर वक्त हाथ से निकल गया तो उसके बाद आप लाख चाहने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी बेरुखी उनकी सहन शक्ति को पार कर गई तो हमें डर है कि आप उनके जैसी जीवन साथी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वक्त है अभी भी आपके पास, उस दुश्मनी को भुलाकर अपने और आरवी के रिश्ते को सुधारने में ध्यान लगाइए, अपनी गलतियों को सुधारिए। अगर दुश्मनी निभाते रहे तो आज जो आपके पास है आप वो भी खो देंगे। सुभाष जी ने एक पिता की तरह शान को बहुत प्यार से अपनी बातें समझाने की कोशिश की। भले ही शान की हरकत पर वो उससे नाराज थे, पर उन्होंने पिता होने का फर्ज निभाते हुए न सिर्फ उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाया बल्कि उसे सही रास्ता भी दिखाया, और फिर बेबस और उदास चेहरे के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। किचन के एंट्रेंस पर खड़ी छाया भीगी निगाहों से शान को देख रही थी। बाकी नौकर भी वहां आ गए थे। उन्हें और कुछ तो समझ नहीं आया था, पर शान और आरवी के बीच कुछ गड़बड़ है जिसमें गलती शान की है, ये वो समझ गए थे। शान के स्वभाव की वजह से सभी उसे पसंद करते थे, इसलिए जब वो वहां से रोते हुए भागी तो सभी दुखी हो गए, और सुभाष जी के जाने के बाद वो सभी अपने अपने काम पर लौट गए। छाया भी किचन में वापस चली गई। शान से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर इतना हक नहीं था उसे, और जब घर के बड़े उसे समझा कर गए तो वो क्या ही कहती उससे। सुभाष जी जा चुके थे। शान कुछ पल वहीं सर झुकाए बैठा रहा। उसके कानों में सबकी कही बातें और कल पार्टी में लोगों के बीच हुई बातें घूम रही थीं। आंखों के सामने आरवी का आंसुओं से भीगा नाराजगी भरा चेहरा घूम रहा था। कुछ पल वो यूं ही वहां बैठा रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने ट्राउजर के पॉकेट से अपना फोन निकाला और कार्तिक को कॉल लगाते हुए सीधे घर से बाहर निकल गया। कुछ ही रिंग के बाद दूसरे तरफ से कार्तिक ने फोन उठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। कल की पार्टी की जितनी भी वीडियो या फोटोज सोशल साइट्स और मीडिया में है उसे अभी के अभी डिलीट करवाओ। मेरी और आरवी की ऐसी कोई भी वीडियो या फोटो कहीं नहीं मिलनी चाहिए जिसमें हमारे पर्सनल मोमेंट दिख रहे हों। शान ने बिना बात को घुमाए सख्त लहजे में अपनी बात कही। पहले तो कार्तिक शॉक्ड रह गया और कुछ बोल ही नहीं सका। उसकी खामोशी देखकर शान ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बात समझ आई है नहीं? जैसे ही कार्तिक के कानों में शान की गुस्से भरी आवाज पड़ी उसने तुरंत ही हामी भरते हुए कहा, जी जी सर समझ गया, और आप निश्चिंत रहें काम हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर आपकी और मैम की जितनी भी वीडियो और फोटोज वायरल हुई है सब हटा दी जाएगी। जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करो, अगर इस काम में कहीं कोई लापरवाही दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। शान की धमकी सुनकर बेचारा कार्तिक डर गया और डर के मारे उसे पसीने आने लगे। उसने हड़बड़ाहट में कहा, जी सर मैं समझ गया।
कार्तिक बात खत्म भी नहीं कर सका था कि शान ने फोन काट दिया और अपनी गाड़ी में बैठते हुए वहां से निकल गया। इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था। शान ने वहीं नहाया, फिर फ्रेश होकर अपनी चेयर से सर टिकाए आंखें बंद करके बैठ गया। वो यूं घर से आना नहीं चाहता था, पर आरवी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर, इसीलिए वो सीधे ऑफिस आ गया। पर यहां आकर भी उसका मन अशांत ही रहा। उसने कुछ देर बाद अपने फोन पर चेक किया तो कल की उसकी अनाउंसमेंट के अलावा बाकी सभी वीडियो और फोटोज हटाई जा चुकी थीं। शान ने गहरी सांस ली और फोन टेबल पर रखने के बाद अपनी कोहनियों को टेबल से टिका दिया और हथेली से अपने चेहरे को ढककर बैठ गया। टू बी कंटिन्यूड।